और यहाँ से रामायण का प्रसिद्ध प्रकरण शुरू होता है, केवट प्रकरण, भगवान का गंगा पार होना। ये प्रकरण बड़ा सिद्धांत रखता है, संक्षेप में सुनिए। भगवान गंगा के तट पर आ चुके हैं, एक नौका वाला बैठा है नौका में, नौका की डोर बंधी हुई है तट के साथ, और केवट के सामने भगवान स्वयं खड़े हैं अपने आप, और भगवान मांग रहे हैं केवट के पास। मांग शब्द से इस प्रसंग का उद्घाटन होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, मांगी नावन केवट आना, गाइए, मांगी जाना पहचाना प्रसंग, मांगी नावन केवट आना, कहगी तुम्हार मरम में जाना, कहगी तुम्हार मरम में जाना, भगवान नौका की मांग कर रहे हैं, भाई हमको सामने तट जाना है, नौका में बिठाओ। मैंने शायद आगे भी हमने चर्चा कर ली कि रामचरितमानस में दो जगह भगवान मांगते हैं, एक शंकर भगवान से मांगा था कि आप शादी करें, और आज केवट से मांग रहे हमको पार्क लगा लो। सवाल ये उठता है कि भगवान ने मांगा क्यों? पूरी सृष्टि जिसके पास मांगती है, स्वयंभू मनु ने भगवान से मांगा, शत्रुपा ने भगवान से मांगा, शंकर भगवान मांगते हैं बार बार, बर मांगहु हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग, नारद जी मांगते हैं, सनकादिक मांगते हैं, वशिष्ठ जी मांगते हैं, ब्रह्मा जी मांगते हैं, इंद्र मांगते हैं, सब प्रमाण है रामायण में। इतनी बड़ी हस्तियां भगवान के पास मांगते हैं, ऐसे परमात्मा आज एक केवट के पास खुद मांग रहा है, मांगी ना। तो प्रथम प्रश्न संतों ने यह उठाया यहां कि केवट को भगवान ने मांगा क्यों? तीन कदम में पूरे विश्व को नाप लेने वाला परमात्मा केवट से मांग करे क्या? क्यों मांगा भगवान? संतों ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि भगवान नहीं मांगते, लेकिन यहां मांगा उसका कारण, ये घटना यमुना के तट होती तो भगवान नहीं मांगते, ये घटना गोदावरी के तट होती तो भगवान नहीं मांगते, लेकिन भगवान को मांगना पड़ा क्योंकि ये घटना गंगा के तट हुई है। पर गंगा क्या है, जिसकी व्याख्या बालकांड में आई,
राम भगति जह सुर सरी, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा।
भगवान ने मांगा क्योंकि घटना गंगा के तट पर होती है। गंगा यानी भक्ति, भक्ति का घाट ऐसा है जहां भक्त नहीं मांगता, भगवान ही मांगता है। भक्ति में भक्त कैसे, जहां भक्त मांगता है वहां भक्ति रहती ही नहीं, भगवान ही मांगता। एक गंगा भक्ति है। संतों ने बहुत सुंदर स्पष्टता की है, नदी के जैसे दो तट होते हैं, एक तट पर छूकर पानी बहेगा, दूसरा तट खाली होगा जहां लोग रेती में छोटे बड़े खेत बनाएंगे, उसमें फल फलादि उगाएंगे। तो भक्ति के भी दो तट है, निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति। जो गंगा का पानी लेकर छोटे बड़े खेत बनाकर फल फूल उगाएंगे, जहां से कुछ पाना है, वो सकाम भक्ति का तट है, लेकिन केवट जहां बैठा है वो निष्काम भक्ति का तट है। जो भक्त भक्ति के तट बैठा है, इतना ही नहीं, निष्काम भक्ति के तट पर बैठा है, तो उसके पास भगवान ही मांगेगा, भक्त कभी नहीं मांगेगा। आश्चर्य की बात तो ये है कि भगवान स्वयं आए तो भी वो खड़ा नहीं होता, भगवान को आदर नहीं देता, पधारिए नहीं कहता, नौका से उठा नहीं, बस नौका में ही बैठा रहा, देखता रहा। भगवान कह रहे हैं हमको नौका दो, हमको बिठाओ, जवाब भी नहीं, अपनी मस्ती में बैठा। लखन जी से नहीं रहा गया कि ये इतनी वो अभिव्यक्त कर रहा है। लखन जी ने कहा कि तुम उठता नहीं, वंदन नहीं करता, सरकार स्वयं मांग रहे हैं तुमसे तेरा सद्भाग्य, और अभी तक तू चुप। तुम्हें भगवान की आज्ञा माननी चाहिए, भगवान शंकर आज्ञा मानते हैं और तुम एक सामान्य जीव भगवान की आज्ञा नहीं मानते। केवट ने कहा, लखन जी क्षमा करें, शंकर को आज्ञा माननी पड़ेगी, मुझे मानने की जरूरत नहीं। देखिए उसकी फकीरी कितनी प्यारी है, मुझे आज्ञा मानने की जरूरत, अरे वो शिव है तुम जी हो, भले ही मैं जीव हूं, शंकर आज्ञा माने, मुझे नहीं मानना। क्यों? कि शंकर के सर पर गंगा बहती है, इसलिए उसको आज्ञा माननी पड़े, मेरे तो पैरों के तले गंगा बहती है, मुझे आज्ञा मानने की जरूरत नहीं। जिसके सर पर शिव जी ने कहा था ना, सिर भर आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, जिसके सर पर गंगा हो वो आपकी आज्ञा कबूल करे, मेरे तो पैरों के नीचे गंगा बह रहे, मैं क्यों मांगू, यानी मैं क्यों आज्ञा मानू। लखन जी चुप हो गए। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन हमको नौका पार करवा दो। तो केवट ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि आपकी चरण धूली में ऐसी कुछ मूरी है सजीवनी, कि जिसको छूती है, पत्थर को, शिला को छुई तो उसमें से ऋषि पत्नी प्रकट हो गई। महाराज ये तो लकड़ी की नौका है, पत्थर से लकड़ा तो नरम होता है, और आपकी चरण धूली इस लकड़ी को लग जाए और उसमें से ऋषि पत्नी उत्पन्न हो जाए, तो एक तो आजीविका का साधन टूट जाए और घर में एक संख्या की वृद्धि हो जाए। मैं ये खतरा मोलना नहीं चाहता महाराज, आपको सामने तट जाना हो तो मैं जो कहूं सो करना पड़ेगा। और आप ये भी याद रखना महाराज कि ये तट पर आपको आज दूसरी नौका मिलने वाली नहीं, मैं ही हूं यहां, क्योंकि सब सकाम तट पर है, निष्काम तट पर कोई कोई होता है, बाकी तो कई नौकाएं होगी, लेकिन सकाम तट पर भक्ति कई लोग करते हैं, सकाम करते हैं, निष्काम तो कोई कोई, कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोरी, कहीं कहीं दिखाई दे। तो केवट ने कहा महाराज नौका में बैठकर यदि जाना है तो आप मैं जो कहूं सो करें, बाकी तो ऐसा करें आप यहां से किनारे किनारे चले जाइए, बहुत दूर जाने के बाद पानी कम है, वहां से पैदल उतर कर चले जाइए, बाकी नौका से और यही निष्काम घाट से उतरना है तो मैं जो कहूं सो आपको करना पड़ेगा। और महाराज क्षमा करें, एक बात आपकी मैं जानता हूं। बोले क्या? आपको तैरना नहीं आता। भगवान को पकड़ा इस आदमी, सीता जी ने और लखन ने दोनों ने भगवान के सामने देखा कि महाराज ठीक है। बोले हाँ लगता तो ठीक। केवट ने कहा आपको तैरना नहीं आता महाराज, आपको दूसरों को तारना ही आता है, आप खुद नहीं तैर पाते, और आपको सामने तट जाना है तो आपके चरण धुलवाइए, मैं मांगूंगा नहीं। अब थोड़ा सा सोचिए कि भगवान की चरण धूली मिले तो लोग कृत कृत्य हो जाए, और ये आदमी कहता है मुझे चरण धूली नहीं चाहिए। सुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, ये सब जो दलीलें की है उसने, उसके पीछे उसकी एक दावा है कि अहल्या को चरण धूली की जरूरत रहती है, क्योंकि वो शाप बस थी और चरण धूली से उसमें चेतना प्रकट गई, भूल हुई थी, इसलिए उसको पावन होने के लिए चरण धूली की जरूरत, मेरी नौका ने आज तक कोई भूल नहीं की, उसको पवित्र होने की जरूरत नहीं, साधन शुद्धि का दावा किया। और हमने पहले भी शायद सोचा कि भक्ति मार्ग में साधन शुद्धि की बहुत जरूरत है, भक्ति में साधन शुद्ध होना, मेरी नौका ने कोई पाप नहीं किया कि आपकी चरण धूली की उसको जरूरत हो, तो आपको यदि सामने तट जाना है महाराज तो आपके चरण धुलवाने पड़ेंगे। सामने से कहा, मांगा नहीं, कहा कि आप कहो मैं शाम तक बैठा हूं, और तीनों अरस परस चर्चा कर लो, शाम तक हूं यहां से जाऊंगा नहीं, और तीनों आपस में चर्चा करके मुझे कहना कि भाई चरण धो लो, आप जब कहेंगे तब मैं आपको चरण धोकर नौका। बाबा जी लिखते जो प्रभु पार अवसिगा चहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं, आप अवश्य यदि पार जाना चाहते हैं तो मोहे मुझे पैर धोने को कहो। इतना कहकर भगवान को बहुत सुंदर बातें सुना रहा, आइए
पद कमल धोई चढ़ाई नाव, पद कमल तेरा ही चाहूं नाथ, नाथ तेरा ई चाहूं। मोहे राम राउरी आन दशरथ राम, मोहे राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। पथ सब साची कहूं, सपथ सब साची कहूं,
निष्काम भक्ति और शरणागति के अद्भुत तट पर बैठा हुआ ये भक्त भगवान से कहता है, महाराज मुझ में इतनी भी क्षमता कहां कि मैं आपसे कहूं कि आपके चरण मुझे धोने दो, आप ही करवाइए। मुझ में इतनी भी क्षमता नहीं कि मैं आपसे मांगू हाथ जोड़ू, ये भी मुझे नहीं आता, आप सब कुछ करवाइए। मोहि पद पदुम पखारन को आप कहे साथ। और महाराज आप एक बार कह दे कि चरण धो लो, चरण धोने के बाद नौका में बिठाकर सामने तट पहुंचाऊंगा और मैं शर्त करता हूं उतरा ही नहीं लूंगा। शायद आपको ये हो कि नौका में बिठाएगा बाद में उसको कुछ देना पड़ेगा, तो मैं आपसे स्पष्ट करता हूं मैं उतरा ही लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उतरा ही देने जैसी कोई चीज आपके पास बची नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ ले लिया। और महाराज हम सबकी उतरा ही लेते हैं, साधु वेश में जो हो, उदासीन कपड़े जो हो, उसकी उतरा ही हम नहीं लेते। और प्रथम परिचय में यदि आपको मुझ पर यकीन न आए तो मैं आपके और आपके पिता की कसम खाकर, आपके आन और पिता की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उतराई का पैसा नहीं लूंगा। बिल्कुल वैसे ही आपको पार लगा। जब केवट ने ये कहा कि मुझे आपके पिता की कसम, अभी बैठे बैठे ही बात कर रहा, उठा नहीं, तब लखन जी से नहीं रहा गया। और लखन जी ने निशंग से तीर निकाला पौना भाग का कि तेरी यही हिम्मत, भगवान ने तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो तू अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा कि मेरे पिता तक पहुंच गया। तुरंत तीर खींचा, काल का स्वरूप है लखन जी, फिर भी वो बैठा रहा। भगवान को कहने लगा, महाराज आपके भाई का स्वभाव जरा उग्र लगता है, वो मारने के लिए तीर खींच रहा, वो ये समझ रहे हैं कि मैं डर जाऊंगा। भक्ति दो प्रकार से लोग करते हैं, भय से और लोभ से। ये व्यक्ति की भक्ति में न भय है न लोभ है। उसने कहा कि मैं उतरा ही नहीं लूंगा तो साबित हो गया कि लोभ नहीं है। और काल साक्षात लखन जी तीर खींचे जा रहे हैं फिर भी वो उठा नहीं, तो उसकी भक्ति में भय भी नहीं है, निर्भय है बिल्कुल। कह दिया, महाराज तुम्हारे भाई मुझे तीर मारने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन क्षमा करे प्रभु, ये उल्टी गंगा है। बोले क्या? कि एक और से आप मांग रहे हैं और दूसरी ओर से आपका भाई मुझे हथियार दिखा रहा है। जिसको मांगना हो ना महाराज, उसको हथियार नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जो मांगना चाहे वो हथियार रखे, ठीक नहीं। और मैं डरने वाला नहीं महाराज, मुझे तो आनंद होगा। बोले क्या? कि तुम्हारे भाई के हाथों मेरी मौत हो जाए तो सबसे पहला आनंद ये होगा कि गंगा के तट पर मौत हुई, दूसरा सद्भाग्य आप और सीता जी के सन्मुख मौत हुई, तीसरा सद्भाग्य ये कि लखन जी के हाथ मृत्यु हुई, चौथा सद्भाग्य ए कि मैं ऐसे मरूंगा तो मेरे कुटुंब के लोग रोते रोते आएंगे, आपका स्वभाव कारुणिक है, आपको दया आ जाएगी, तो आप सबको राजी करने के लिए भी मेरी स्मशान यात्रा में हाजिर रहोगे और मेरा अग्नि संस्कार आपको करना पड़ेगा। लखन ने जब ये बात सुनी तो जो तीर खींचा था निशंग से वो पुनः रख दिया कि मारने जैसा नहीं, वरना उसकी ननामी मेरे कांध पर आएगी। तीर रख दिया, अथवा तो ये आदमी ने यह कह दिया कि यदि तुम्हारा भाई मुझे तीर मारे तो मुझे फायदा यह होगा, क्योंकि मुझे गत जन्म का ख्याल है कि तुम्हारा भाई शेष का अवतार और मैं समुद्र का जीव आपके चरणों तक पहुंचने के लिए आता था, तो तुम्हारे भाई ने फना मारकर मुझे समुद्र में गिरा दिया और मेरी मौत हुई थी। एक बार उसकी थपाट लगी तो मैं जलचर से मनुष्य हो गया, आज दूसरी थपाट लगी गई तो मैं मनुष्य से महात्मा बन जाऊंगा। मेरी बढ़ती हो जाएगी, मैं ये अवसर चुकना नहीं चाहता। यदि मुझे मारे तो मुझे कितना फायदा हो जाएगा। बहुत निर्भीकता से बोला है बाबा जी। कहते
बरुतीर मारग लखन पे, बरुतीर लगीन पाय पखारी हो। जब लगीन पाय पखारी हो, तब लगीन तुलसी दास नाथ, तब त्रिपालु पार उतार। त्रिपालु पार उतार। पद कमल धोई चढ़ा, नाथ तेरा ही चहूं, नाथ तेरा ही चहूं।
यदि लखन जी तीर मारेंगे तो मुझे बहुत फायदे हो जाएंगे। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन जब तक आपके पाए धोने का मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। निर्णय आप करें, फैसला आप करें। केवट की इस प्रेम भरी भाषा, अटपटी और प्रेम में लपेटे हुए शब्द को जब सुना भगवान ने, तो भगवान गंगा के तट पर पहली बार बहुत हंसने लगे। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहंसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तर। केवट की बानी को सुनकर, प्रेम में डूबी हुई सराबोर बानी, अटपटी बानी सुनकर भगवान आज पहली बार खड़खड़ा मुस्कुरा हंसने लगे बिहंसे। सीता जी ने देखा कि भगवान को मैंने इतने हंसते पहले कभी नहीं देखा। पूरे संसार को जो परमात्मा मुक्त करता है उसके चेहरे पर हास्य बंधन में था, आज इस केवट ने भगवान की हंसी को मुक्ति दिला दी। जानकी जी बहुत खुश हुई और भगवान बहुत हंस रहे हैं केवट की बातें सुनकर। बाबा जी ने लिखा, लखन और सीता के सामने देखकर भगवान हंसे हैं। महात्माओं ने कई अर्थ निकाले कि भगवान लखन और सीता के सामने देखते देखते क्यों हंसे। क्या लक्ष्मण जी के सामने देख कर भगवान इसलिए हंसे कि लखन मुँह चढ़ाए क्यों खड़े हो, ये तेरा चेला है। रात को तू कह रहा था राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तूने जो सब स्पष्टता कर दी इसने सुन लिया चौकी करते करते, और इसलिए वो पकड़ा रहा है मुझे कि राम ब्रह्म है। और तेरे चेले के ज्ञान पर तुम्हें आनंद होना चाहिए और तुम मुंह चढ़ाए क्यों, इसलिए भगवान हंसते। अथवा तो भगवान सीता और लखन दोनों को निमंत्रण देते हैं, मैं हंसता हूं तुम भी हंसो। निष्काम भक्ति के तट पर हैं हम, हंसिए। एक संत कहते हैं भगवान सीता जी के सामने देखकर हंसे। क्यों? भगवान मानो सीता जी को बता रहे हैं कि देवी याद है आपके पिताजी ने मुझे आप जैसी कन्या समर्पित की, तो भी मैंने दाएं पैर का एक अंगूठा ही धोने दिया, पूरा पैर धोने नहीं दिया। और ये आदमी देने वाला कुछ नहीं और दोनों पैर पूरे का पूरा धो लेगा, इसलिए भगवान हंसे। एक संत ने कहा, नहीं भाई, हमको तो ऐसा लगता है कि लखन के सामने देखकर हंसे प्रभु, क्योंकि लक्ष्मण को, मैंने इस कथा सुनी कि लक्ष्मण को ऐसी बचपन में आदत थी, लखन जी को जब छोटे थे तो सदैव राम जी के साथ ही रहा करते थे, तो कौशल्या जी जब राम को पलना में सुलाती तो लखन को साथ में ही सुलाती, एक पलने में दोनों सोया करते थे। ऐसा सुना।
और लखन का मुंह भगवान का पैर जिस तरफ हो वहां रखना होता था, क्योंकि लक्ष्मण जी को आदत थी सोते सोते भगवान के पैर का अंगूठा मुंह में लगकर चूसते रहते, तभी ही नींद आती थी। कभी यदि भगवान के चरण का अंगूठा नहीं मिलता तो लखन इतने रोते और पूरे परिवार को जगाते रहते और परेशान करते। भगवान आज वही घटना को याद करके हंस रहे कि लखन याद है बचपन, एक अंगूठा तुम्हें नहीं मिलता था तो तू पूरे परिवार को परेशान करता था, और आज तुम्हें भी तीर निशंग में रखना पड़ा और ये दोनों पैर अकेला धो रहा, इसलिए लखन के सामने हंस। लेकिन एक संत ने कहा कि नहीं, सीता और लखन के सामने विलग विलग नहीं, संयुक्त रूप से हंसे, दोनों को भगवान कुछ कह रहे हैं। और एक घटना उसके पीछे, आपने सुनी होगी शायद कथा कि भूतकाल में अयोध्या में एक घटना घटी। भगवान ब्याह कर जब अयोध्या आए तो सीता जी ही भगवान के चरण की सेवा करती थी, लखन जी को चरण सेवा नहीं मिलती। लखन जी को सेवा नहीं मिले इसलिए वो बिल्कुल उदास रहते थे, शरीर सूखने लगा, खाना कम हो गया। एक दिन भगवान ने लक्ष्मण जी को पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो, शरीर क्यों सूखा जा रहा है, क्या बात है? तो आंख में आंसू आ गए। कहा, महाराज जब से आप शादी करके आए हैं ना, आप जानते हैं मुझे आपके चरण की सेवा मिली है, और आपके चरण की सेवा न मिले तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है प्रभु। भगवान ने कहा, तुम चरण की सेवा के लिए कमरे में आते हो तो? बोले, मेरी माँ मुझे देखती है फिर भी बुलाती नहीं, इसलिए मुझे संकोच होता कि मर्यादा के खातिर भी मुझे नहीं आना चाहिए, या तो मेरा आगमन उसको रुचिकर नहीं। राम जी ने कहा, तो मैं क्या कर सकूं, क्योंकि वो पत्नी है और पत्नी का प्रथम अधिकार है, मैं क्या करूं। लखन जी ने कहा, महाराज कुछ करें, आपके चरण की सेवा मुझे मिले। भूतकाल की घटना, आज गंगा के तट पर हंसते भगवान को याद आई, इसलिए दोनों के सामने देख कर हंस रहे। भगवान ने कहा, लखन एक काम करो। बोले, क्या? 4 दिन के बाद होली का त्यौहार आता है। हाँ, और तुम जानता है कि होली के दिन हमारे रघुकुल में देवर और भाभी के बीच में होली खेली जाती है पूरे दिन। हाँ, और शाम को देवर भाभी के पास जो मांगेगा वो रघुकुल की भाभी भेंट देगी, ठीक है? बोले, हाँ। तो 4 दिन के बाद जब होली आएगी, वडिलों की उपस्थिति में तुम भरत और शत्रुघ्न सीता के साथ होली खेलना, और संध्या के समय जब होली का उत्सव समाप्त होने लगे तब भरत सीता के पास जो मांगे सो मांगे, लेकिन तेरी बारी जब आए तब तुम मेरे चरण की सेवा मांग लेना, जिससे मुझे बीच में आना न पड़े और तेरा काम बन जाए। और रघुकुल की रीत के प्रमाण में सीता वचन नहीं तोड़ सकेगी। लखन जी बहुत खुश हो गए, महाराज ये तरीका ठीक है, लेकिन आप एक और कृपा भी कर दीजिए। बोले, क्या? कि होली जल्दी आए, ऐसा करें महाराज। भगवान ने कहा, होली तो जैसे आएगी वैसे आएगी। लखन जी ने होली के जप शुरू कर दिए कि होली जल्दी, भगवत चरण की सेवा मिले तो होली भी दिवाली है, और चरण न मिले तो होली होली दिवाली समझो होली होली दिवाली। किसी के शब्द हैं, होली ही होली दिवाली समझो, आया मैं भक्ति का पैगाम लेकर, आया मैं भक्ति का पैगाम लेकर, मुझे डाक घर का टपाली न समझो, मुझे डाक घर का टपाली न समझो, होली ही होली दिवाली न समझो, होली के जप शुरू कर दिए। होली कब आए, होली कब आए। 4 दिन व्यतीत हो गए, होली का सूर्योदय हुआ, रंग के बड़े बड़े कुंड भरे गए, माता पिता गुरुदेव सब वडील खड़े हैं, और सीता के साथ तीनों भाई होली खेल रहे हैं। भगवान दूर खड़े खड़े देखते हैं कि अभी तो होली खेली जा रही है, लेकिन संध्या के समय जब तीनों भाई वरदान मांगेंगे और लखन जब मांगेगा तब होली प्रकट होगी, जलेगी। अभी तो खेली जा रही है लेकिन संध्या के समय प्रगटे, तो भगवान दूर खड़े। पूरा दिन होली का उत्सव रहा और सूर्यास्त होने की तैयारी, तो दशरथ जी ने कहा, जानकी बेटी, हाँ पिताजी, बस बंद कर दो उत्सव पूरा, तीनों भाइयों को होली की भेंट जो देना हो दे दो, लखान भरत शत्रुघ्न तीनों आ गए भगवान दूर खड़े। सबसे पहले भरत जी आए और सीता जी ने पूछा कि भैया होली की भेंट मांगो क्या दूं, तो भरत जी ने मांग लिया। उसकी मांग तो प्रसिद्ध है, जन्म जन्म रति राम पर, परमात्मा के चरणों में अनंत जन्मों तक प्रीत बनी रहे, अखंड प्रीत बने। जानकी जी ने कहा तथास्तु। शत्रुघ्न को बुलाया, भैया तुम मांग। शत्रुघ्न ने कहा मां होली की भेंट देनी है, तो भरत भैया ने जैसे भगवंत पद प्रीत मांगी, मुझे भरत भैया की सेवा जन्म जन्म मिले, मैं संत की सेवा में संलग्न रहूं। तथास्तु। लखन की बारी आई और भगवान समझ गए बस अभी प्रकट होने की तैयारी। लखन जी आए, सीता जी ने पूछा लखन भैया मांगो क्या दूं, तो लखन जी ने कहा मां होली की भेंट देनी है तो इतना दे दो, आज से परमात्मा के चरणों की सेवा का अधिकार मेरा, चरण सेवा मुझे मिले। जब चरणों की सेवा सीता जी से मांग ली गई और जानकी जी को इतना आघात लगा, चक्कर आने लगी और गिर पड़ी, क्योंकि सीता जी को हुआ कि चरण सेवा यदि चली जाए तो मेरे जीवन का क्या अर्थ, सेवा ही सरकार की नहीं मिले तो मैं क्या करूं। एकदम आघात लगा और गिर पड़ी जानकी। कुछ हो गया, मना भी नहीं कर सकती और देना भी मुश्किल, सेवा चली जाए तो क्या करे। बहुत गहरी मूर्छा आ गई, सब वैद्य हकीम दौड़ते आए क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन मूर्छा उतरी ही नहीं। दशरथ कौशल्या सब लखन के सामने देखने लगे, तुमने मांगा क्या, सीता को क्या हुआ। सब लोग लखन के प्रति खफा। लखन जी परेशान, अब क्या करें। भगवान के पास गए, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मेरी माता जी की मूर्छा उतर जाए ऐसा करो, ये पूरा परिवार मेरे सामने दुश्मन की तरह देख रहा है। तो भगवान ने हंसते हंसते कहा मैं क्या करूं, तुमने मांगा ही ऐसा तो ऐसा ही होगा। बोले सिखाया भी आपने और डांट भी आप रहे हैं, चार दिन पहले आपने ही तो सिखाया। तो भगवान ने धीरे से कह दिया लखन को कि लखन वैद्य हकीम की दवाइयों से ये मूर्छा उतरने वाली नहीं, ये तो प्रेम और सेवा का दर्द है, और प्रेम और सेवा के दर्द को कौन दवा काम कर। सूफीवाद में एक सिद्धांत है कि दर्द वो है जो जीवन पर्यंत दर्द बना रहे, जो दवा से अच्छा हो जाए वो तो बीमारी है, वो दर्द नहीं। दर्द में जीवन पर्यंत की बीमारी रहे, दर्द में हद से जब दर्द बढ़ जाता है तब दर्द ही दवा बन जाती है, ऐसा सूफीवाद का सिद्धांत। तो ये दवा से अच्छा होने वाली अच्छी होने वाली बीमारी नहीं, ये तो प्रेम और सेवा का समर्पण। इसलिए मीरा ने ठीक कहा, ना मैं जानू आरती वंदन, ना मैं सखी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्दन जाने को, सखी मैं तो दर्द दीवानी मेरो, सखी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्दन जाने को। दर्द की मारी बन बन भटकूं, दर्द की मारी, दर्द की मारी बन बन भटकूं, वैद मिला नहीं कोई, वैद मिला मिला नहीं कोई, मीरा पीर तब रे मिटे जब, मीरा मीरा पीर तब रे मिटे जब, सवारी
पूजा की रीत सखीरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्दन जाने कोई सखीरी सखीरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्दन जान कोई
लखन। ये प्रेम और सेवा की बीमारी है, ये दवाइयों से अच्छे होने वाली नहीं। तो एक काम कर, भगवान ने कहा सीता के पास जाकर धीरे से कह दे कि दायां पैर मेरा और बायां आपका। जब रात्रि को पैर की सेवा करनी हो तब हम समाधान करके पैर की सेवा करें। लखन जी गए और सीता जी को कहा माँ होली की भेंट के लिए आपका वचन भी निभ जाए और मुझे सेवा मिल जाए। तो दायां पैर मेरा बायां आपका, सीता जी ने सोचा कि सब लूट जाता हो और आधा बच जाए तो बचा लेना वाला सयानक माना जाए, इसलिए सोच लिया कि चलो एक तो एक रहा सो रहा। तो ये दोनों पैर को ऐसे बांट दिए गए। आज भगवान गंगा के तट पर श्री सीता जी और लखन जी के सामने देखकर इसलिए हंसे कि दोनों को याद करा रहे थे कि याद है पुराना प्रसंग होली का, एक एक पैर के लिए तुम दोनों लड़ते थे, लेकिन आज तुम दोनों को खड़े रहना और ये अकेला दोनों पैर ले जा रहा है, इसलिए भगवान हंसे। एक संत ने कहा नहीं, भगवान हंसे इसलिए लखन को मानो याद दिलाते। बड़ी प्रसिद्ध कथा आप जानते हैं कि ये केवट गत जन्म में समुद्र का जीव था, ऐसी कथा है ना। तो वो तैरता तैरता गया, उसने सोचा कि शेष की पथारी पर बिछाने पर भगवान सोते हैं तो भगवान के चरण को स्पर्श कर लूं तो मेरा उद्धार हो जाए। तो ये जलचर जीव तैरता तैरता गया और शेष के शैया के ऊपर चढ़ने गया तो शेष जी का ध्यान गया, भगवान सोए हैं। उसको लगा कि ये जल का जीव भगवान की निंद में बाधा डालेगा तो एकदम फना लगाकर जीव को गिरा दिया। पुनः उसने प्रयास किया, शेष जी ने पुनः फना लगा दी, पुनः प्रयास किया, वो प्रयास करता रहा, शेष जी उसको मारते रहे। तो गुस्सा आ गया शेष जी को बहुत कि ये जीव कब से परेशान कर रहा है, जोर से फना लगाई और जीव पानी में गिर गया और मर गया। परमात्मा के चरणों को स्पर्श करने की अपेक्षा से मरा ये जलचर त्रेता युग में गंगा के तट पर केवट बनकर पैदा हुआ। आज भगवान को देखते ही उसको अचानक अपने गत जन्म की स्मृति आ गई और इसलिए वो कह रहा है कि महाराज आज कितना ही करो, उस वक्त तो तुम्हारे भाई ने मुझे फना मारकर गिरा दिया था और पैर को छुने नहीं दिया था, लेकिन आज छोड़ूंगा नहीं महाराज दोनों पैर पकड़े बिना। इसलिए भगवान हंसे कि लखन याद है ये आदमी ने कितना याद रखा, कितना पुरानी बात याद रखी, और यही सही शिक्षा है जिसको ऐसा याद रख। हमारे गुजराती में लिखा है, आपने सुना होगा, अभन केटलू याद राखे अभन तुम्हारा पग धोवा दियो रघुराई, धोवा दियो ने रघुराई वाला माने वेम पढ़ो मान माय, तुम्हारा पग धोवा दियो रघुराई, जोई चतुराई भील जननी जान की मुस्काय जी, जोई चतुराई अभन के टलू याद राखे अभन के टलू, कितना याद रखा अनपढ़ आदमी ने,
अभन के टलू याद राखे अभन के टलू याद राखे, पहलो भाड़ेल भूली जोन जाए तमा माने वैम पड़ो मान माय पग मने धोआ दो रघुना पग मने धोआ दो रघुना पग मन धोआ दो रघुना।
इसलिए भगवान हंसे कि लखन इस अनपढ़ आदमी को कितना याद रहा, पढ़ा लिखा भूल जाए और ये अनपढ़ ने कितना याद रखा। इसलिए भगवान हंसे और परमात्मा हंसते हंसते बहुत प्रसन्नता के साथ केवट को आज्ञा दे देता है कि केवट चलो जल ले आओ और पैर धो लो। भगवान की स्पष्ट आज्ञा मिल गई। बाबा जी लिखते हैं,
बेगी आनी जल पाए पखारू बेगी आनी जल पाय पखारू होत विलंब उतार पारू केवट राम रजाय सुपावा केवट राम रजाय सुपावा पानी कथौटा भर ले आवा आवा पानी कथौटा भर ले आवा बेग आनी जल पाए पखारू विलंब उतार पारू होत विलंब उतार पारू
अभी तक केवट बैठा है। कितनी अद्भुत शरणागति इस आदमी की। भगवान को सामने से कहना पड़ा कि चलो भाई जल ले आओ और पैर धो लो। इसने मांगा नहीं। जब भगवान ने कहा जल ले आओ और पैर धो लो तब केवट खड़ा होता है। और मैंने सुना महात्माओं से कि खड़ा होकर किनारे पर आकर चलने लगा गांव की ओर। भगवान ने कहा अरे भाई कहाँ जा रहे हो, पैर धो लो ना जल लेकर। बोले महाराज क्षमा करें, हम गरीब लोग और तो नहीं जानते लेकिन इतना जरूर जानते हैं। बोले क्या, कि कोई मंगल कार्य करना हो तो अकेले नहीं करना चाहिए, पत्नी को साथ में रखनी चाहिए। इसलिए मैं मेरी पत्नी को बुला लाऊं, बच्चे को बुला लाऊं। लखन जी ने कहा महाराज ये छोटे आदमी को आपने इतनी बढ़ाई दे दी, अब उसकी पत्नी को लाएगा बच्चे को लाएगा, सब स्नान करेंगे कपड़े बदलेंगे, तब तक हमको खड़ा रहना। भगवान कहे अब फंसे हैं क्या करें, रहे खड़ा। सुना है ऐसा कि केवट वार्ता करता है अपने परिवार के साथ कि भगवान के चरण धोने का अवसर मिला चलो, तो सब नाचने लगे प्रभु का चरण धोने का अवसर। तो कहते हैं उसकी पत्नी रोने लगी। हमने सुना है, मानस में नहीं लिखा, महात्मा लोग कहते। तो केवट ने पूछा क्यों रोती है। बोले आज मुझे विचार आता है कि हमारे घर में सोने या चांदी का बर्तन होता तो आज प्रभु के चरण हम उसमें धोते, हम गरीब लोग क्या करें। केवट ने कहा हमारे घर में तो है ही नहीं सोने चांदी का बर्तन, लेकिन होता ना तो भी मैं भगवान के चरण उसमें नहीं धोता। क्यों कि नहीं, मेरी नौका में लकड़ी की जो कथौटा है उसी में ही भगवान का चरण धोना। बोले क्यों, दो तीन कारण। सोने चांदी या धातु के पात्र में भगवान के चरण धोएंगे तो धातु पानी चूसेगा नहीं,
चरणामृत सबको बांट दो और धातु जैसी थी वैसी हो जाएगी। लेकिन लकड़ी के पात्र में चरण धोएंगे ना तो लकड़ा नरम होता है और थोड़ा भगवान का चरणामृत चूस लेगा, और चरणामृत सबको देने के बाद भी लकड़ी के कथौटा लकड़ी का कथौटा 7-8 दिन तक भीगा रहेगा, और भगवत चरणामृत से भीगा हुआ ये पात्र बाद में मैं नौका से तुम्हें रसोई घर में दे दूंगा और तुम वही पात्र में मसल करके रोटी बनाओगी, तो भगवत चरणामृत से भीगे पात्र में बनी हुई रोटी हम खाएंगे तो हमारा जन्म धन्य हो जाएगा, हम कृतकृत्य हो जाए। और दूसरा कारण ये कहा शायद कि नौका भी लकड़ी की और कथोटा भी लकड़ी की, नौका को परमात्मा के चरण की प्रसादी मिले और लकड़ी की ही उसी की गिनाती की ही कथोटा और उसको भगवान के चरण का प्रसाद न मिले तो वो शायद फरियाद करेगी कि जब नौका में पानी भर जाता था तो बचाने का काम मैं करती थी, पानी उलीचा करती थी, और मुझे आज भगवान के चरण का प्रसाद नहीं मिला, तो इसलिए भी नौका जरूरी है। तीसरी बात, केवट जान गया है कि भगवान उदासीन व्रत लेकर आए हैं, और उदासीन व्रत जिसका हो उसको धातु के पात्र को स्पर्श करना मना होती है। तो केवट ने सोचा कि लकड़ी में कोई हरकत नहीं और भगवान के व्रत में भंग हो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और ध्यान देना, कभी भी कोई संत या भक्त का व्रत भंग हो ऐसा आग्रह मत करना। कभी कभी लोग हम देखते रहते हैं किसी का व्रत होता है तो कहते हैं हमने प्रेम से इतना बनाया और आप इतना नहीं करोगे, हमने कितना आदर से बनाया, प्रेम में नियम कहा, ऐसा कहकर नियम नहीं। कोई संत कोई महापुरुष अपने नियम में सुदृढ़ है, उसके नियम में बाधा पड़े ऐसा आग्रह मत करना, पाप के भागीदार हो जाते हैं। ये अनपढ़ आदमी कितना पढ़ा लिखा वास्तव में कि कहा कि भगवान के व्रत को बाधा हो ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो लकड़ी का पात्र उसमें पानी लेकर आया, बाबा जी कहते हैं पानी कथौटा भरी ले आओ, भगवान ने मांगा था जल, बेगी आनी जल पाए पखार, जल ले आइए, लाया पानी। भगवान ने कहा तू भी कमाल है, मैंने जल मांगा, गंगा के पानी को पानी नहीं कहना चाहिए जल कहना चाहिए। बोले महाराज आप उसको जल कहो, हम तो पानी ही कहेंगे। क्यों? कि आपके लिए गंगा जल जल है, ऊंचे लोगों के लिए जल है, हमारे लिए गंगा जल जल होता तो हम कितने समय से यहां पड़े हैं फिर भी अधम, हमको ये गंगा पवित्र न कर पाए। ये तो बड़े लोगों की गंगा, ये तो भगीरथ ने जो गंगा निर्माण की, आपने चरण ऊपर उठाया और ब्रह्मा ने कमंडल में दो डाला और ब्रह्मा के कमंडल से जो गंगा बही यही ये गंगा, वो तो बड़े लोगों को तार सकी, हम तो गरीबों को कहाँ तारी। अब तो मैं उसी को पानी कहकर मेरे कथोटे में भरकर आपका चरण मेरी कथोटे में धोकर दुनिया के लिए एक क्रांतिकारी गंगा पैदा करूंगा जो संसार में युगों तक दीनहीन लोगों को उद्धार करती रहेगी। गंगा तो ब्रह्मा के कमंडल वाली गंगा है। भगवान इस दलील के सामने चुप हो गए और पानी कथौटा भरी ले आवा, वो पानी लेकर आया है। भगवान को कहा कि महाराज बस आप पैर रखिए, शांति से जरा सोचिए कि ये आदमी ने भगवान के पैर धोने का आग्रह क्यों रखा। वैसे रजकण उसको हटानी थी तो और ढंग से भी हटा सकता था, लेकिन पैर धोने का आग्रह इसलिए रखा कि भगवान बहुत खूबसूरत थे। एक अर्थ में केवट को लगा कि प्रभु कितने खूबसूरत हैं, और कोई व्यक्ति बहुत खूबसूरत होती है तो उससे बात करने की इच्छा होती है, और मानवी के मन का स्वभाव है कि बात करते करते उसको छूने की भी इच्छा होती है। केवट ने सोचा बहुत खूबसूरत है, मैं उसके शरीर को छूं स्पर्श करूं तो कितना अच्छा। लेकिन केवट को लगा कि मैं उसके शरीर को स्पर्श करूंगा तो एक बार स्पर्श करने से संतोष नहीं होगा, बार बार करने की इच्छा होगी, और किसी रूप वाली व्यक्ति को बार बार छूना वो मर्यादा का उल्लंघन है। तो केवट ने सोचा कि पैर धो लूं, पैर धोने में जितनी बार चाहूंगा स्पर्श करूंगा, भगवान कहेंगे कि बस तो कहूंगा नहीं अभी तक साफ नहीं हुई है, अभी धोने दो ताकि स्पर्श बना रहेगा चरणों का। इसलिए ये आदमी ने पैर धोने का तरीका निकाला, पात्र में पानी ले आया है, पात्र ऊपर रखा है, हाथ ऐसे संत लोग कहते हैं बाएं हाथ में पात्र रखा है, पानी छलाछल भरा हुआ, और दाएं हाथ से पैर धोना है भगवान का। तो भगवान को कहा कि महाराज चरण रखो, तो भगवान ने चरण रखा, सीता लखन देख रहे हैं, सब परिवार के लोग देख रहे हैं, और केवट चरण धोने लगा। तो धोने में इतना भाव विभोर हो गया कि हाथ हिलने लगा, डोलने लगा ऐसे। और जैसे हाथ हिला पात्र हिला, पात्र के डोलने से भगवान का चरण डोलने लगा, खुद सरकार डोलने लगे, तो सब देख रहे लखन जी से नहीं रहा गया। भगवान को कहा कि महाराज ये कोई तरीका है पैर धोने का, उसको कहो ना पात्र नीचे रख दे और आप पैर रख दे और धो डाले। हाथ ऊपर ऊपर रखा है, उसमें पात्र रखा है और पैर रखवाया और हाथ डोलता है, आप खुद डोल रहे। भगवान परेशान और केवट को कहने लगे, केवट ये कौन सा तरीका है? केवट ने कहा महाराज यहां हमारे तरीके से सब होगा, आप चुप खड़े रहे। पात्र मेरा पैर, तू डोल रहा है तेरा हाथ डोल रहा, मेरा पैर डोल रहा, मैं खुद डोल रहा, कहीं गिर जाऊं। केवट ने कहा महाराज ब्रह्मा के कमंडल में जब गंगा प्रकट हुई तब कितना पैर ऊंचा किया था, वामन से जब विराट बने बलि के यज्ञ में तो इतनी ऊंचाई पर पैर ले गए, हम गरीब के पास केवल इतना ही पैर उठाना है, उसमें आपको तकलीफ है? बोले लेकिन इरादा क्या है, मैं गिर जाऊंगा। तो केवट ने कहा ऐसा करें, आपको गिर जाने का भय है ना, हाँ तो ऐसा करें आप दोनों हाथ से झुक करके मेरा सर पकड़ लो ताकि आप गिरोगे नहीं और मेरा काम बन जाएगा। लखन जी ने कहा कि महाराज ये ठीक है, उसके सर पर हाथ रखो ताकि बुद्धि ठीक हो जाए तो हमको परेशान करना बंद करे। परमात्मा ने दोनों हाथ केवट के सर पर खुद नहीं झुका, परमात्मा को झुकाया और दोनों हाथ भगवान ने केवट के सर पर जैसे रख दिए। केवट ने कहा लखन जी को महाराज बुद्धि तो आपकी कृपा से तेज थी और अब भगवान के हाथ रह गए, अब तो और बढ़ जाएगी तेज। दोनों हाथ बुद्धिपूर्वक केवट के मस्तिष्क पर केवट ने रखवा दिया और अब भाव के अधीन होकर पैर धोने लगा। बाबा जी लिखते हैं, आइए बाबा जी लिखते हैं, अति आनंद अति आनंद अति आनंद उमगी अनुराग अति आनंद चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन आनंद में उमड़ा हुआ है केवट और भाव के भाव में मगन होकर परमात्मा के चरणारविंद का प्रक्षालन कर रहा है, आंखों से भाव के अश्रु गिरने लगे। बहुत प्यारा प्रसंग, और आनंद से परमात्मा के चरण धो डाले, पात्र छलाछल चरणामृत से भरा है। भगवान ने केवट को कहा कि अब नौका में बैठे। बोले नहीं महाराज, खड़े रहिए। बोले अब क्या है? बोले आप कुछ समय खड़े रहे, चरणामृत जो पात्र में एकत्रित हुआ वो भीलों को बांटने लगा। सब भील लोग नर नारी कतार में खड़े हैं, सबको चरणामृत देता है। लखन जी, सीता जी ने लखन जी को कहा कि लखन भैया हम भी भीलों की कतार में खड़े रह जाएं तो ही चरणामृत मिलेगा, क्योंकि आज पुजारी वो है। लखन जी ने कहा माँ चरणामृत तो लेना है, लेकिन हम हाथ उसके सामने कैसे फैलाएं, क्षत्रिय हैं। बोले अब फैलाने में क्या तकलीफ, क्योंकि ऊपर से ही मांगने की शुरुआत हुई तो अब हम भी मांगे, सरकार ने नौका मांगी तो हम चरणामृत मांगे। लखन समझ गए कि यहाँ जीत करने का फायदा नहीं, वरना मैं चरणामृत बिना रह जाऊंगा। लखन और सीता जी खड़े हैं, केवट पुजारी बनकर सीता और लखन को चरणामृत देता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, भगवान का नाम लेते हुए सबने चरणामृत पान किया, थोड़ा जल पात्र में रहने दिया। भगवान ने कहा केवट अब हम नौका में बैठे। बोले नहीं महाराज, एक बात। बोले क्या? हमारे यहां तट का ऐसा नियम है कि लाइन में जो पहले खड़े होते हैं उसको पहले उतारा जाए और बाद में जो आए उसको क्रम में पार किया जाए। भगवान ने कहा केवट तुम भी कमाल हो, यहां लाइन में आगे तो कोई खड़े नहीं, हम ही तो हैं, और हमारे आगे किसी की लाइन होती तो हम रघुवंशी मर्यादा को निभाने वाले, कभी किसी की लाइन तोड़ते हम? कोई है तो नहीं, हम तीनों ही तो हैं। बोले महाराज मुश्किल यही है ना कि हमारी लाइन कोई देखता ही नहीं, आपके आगे बहुत लाइन है। बोले किसकी? बोले मेरे कई पूर्वज
गंगा में ऐसे ही मर गए हैं। महाराज पहले आप उसको पार उतार दें, क्योंकि लाइन में खड़े हैं। और मैंने सुना है कि आप वशिष्ठ जी के पास अभ्यास करने गए और वशिष्ठ जी ने सब विद्या आपको सिखाई है, तो उसमें कर्मकांड भी आता होगा आपको। आप क्षत्रिय हैं, भले ही कर्मकांड न करवाएं, लेकिन आपको आता तो है ना। बोले हाँ, तो आप ऐसा करें, ये पात्र में जो चरणामृत है, मैं और मेरी पत्नी गंगा में खड़े रहकर ये जलदान करें और आप हमारे पितृ तर्पण के मंत्र बोले, मेरे पितरों का उद्धार हो जाए, बाद में आपकी बारी लगेगी। भगवान ने लखन को कहा कि लखन शुरू करो, आज ये छोड़ेगा नहीं। जीव धर्म के आचार्य लखन जी मंत्र बोलने लगे और केवट और वो जलदान देने लगे, पूर्वजों को तारा। सोचिए भक्ति कितनी महान है, खुद तारा, परिवार को तारा, गांव को तारा, पूर्वजों को तारा, भक्ति तो कितनी महान। सौ कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज बिनीत। पूरे परिवार को, पूर्वजों को, सबको तार दिया इस आदमी ने। और अब भगवान को कहा कि अब पधारिए नौका। भगवान जब नौका में बैठने गए तो मैंने सुना केवट सो गया भगवान के पैरों से लेकर नौका तक। भगवान कहते कमाल है। बोले महाराज रेती पर बालू पर पैर रखकर चलोगे तो पुनः रज लग जाएगी और खतरा वही का रहा। आप मेरे शरीर पर से चलिए, जैसे बलि के सर पर आपने कदम रखा था वैसे मेरे पूरे बदन पर से चलिए, ताकि भविष्य में कभी मुझे ये अहंकार ना आए कि मैंने भगवान के चरण धोए थे। मैं अहंकार की कहीं घोषणा ना करूं, आपके चरणों के नीचे मैं बिल्कुल समर्पित हो जाऊं। तो कहते हैं भगवान उसके तन पर से चले और श्री सीता जी को, लखन को, और खुद नौका में बैठे, नौकारूढ़ हुए। अब केवट रस्सी छोड़ता है और नौका को गंगा के प्रवाह में बस प्रवाहित, यानी आगे ले जाने की तैयारी। आइए राम राम सीता राम। राम 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 सीता राम, भाव से गाइए।
राम राम।